थैंक यू प्रेम भाई, बट आई एम वेरी हैप्पी कि एक डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी चल रही है, उससे वो एक कमिटमेंट जो है वो बरकरार रहती है. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज को अटेंशन को ग्रैब करने के लिए जरूरत होती है कि पेट फुल हो और दिमाग खाली हो, क्योंकि अगर दिमाग भरा हुआ है तो उसमें नए आइडियाज नहीं आएंगे. So that we can get on with the next one. जब मॉर्निंग में बात चल रही थी तो मुख्यतः बात यह थी कि एक कॉन्टिन्यूम है इमोशंस का, जिस तरह से वो लोग जो कि एनर्जी स्टेट्स से थोड़ा सा वाकिफ हों, एक कॉन्टिन्यूम है हमारे शरीर का, फिर स्थूल शरीर का, फिर उसके बाद एनर्जी शरीर जिसको कई लोग कहते हैं और आज का, और उसके बाद डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स. उस प्रिंसिपल को लेके आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ टुडे इनटू दिस कॉन्टिन्यूम, स्पिरिचुअल डेफिशिएंसीज, साइकोसोशल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड साइकेट्रिक इलनेसेस. हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो कह सकता है कि वो हर प्रकार से संपूर्ण है, उसमें कोई भी स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसको कि पूर्ण करने के लिए हम सब कार्यबद्ध हैं इस समय. लेकिन उसकी जब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जो कि साइकोसोशल प्रॉब्लम्स कहा जा सकता है, जिसमें कि ज्यादातर बाहरी जो इफेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी लौकिक फैमिली के हों या परिवार के हो, अलौकिक परिवार के, या जिस सर्कमस्टांसेस में हम रहते हैं, चाहे वो रहने की स्थान हो, चाहे कुछ तरह के सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स हो, वो साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हैं. और फिर थर्ड स्टेज आती है जहां पे कि उनकी वजह से या हमारी आंतरिक स्थिति की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पैदा हो सकते हैं. ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो है ये क्षणिक भी हो सकते हैं, ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग स्टेट भी हो सकती है. काफी रिसर्च चली है जिसे लाइफ इवेंट्स कहते हैं. लाइफ इवेंट्स का मतलब ये है कि जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते हैं, किसी की शादी होना, किसी का यहां के हिसाब से अगर सोचें तो समर्पित होना, या किसी के परिवार में कोई एडिशन होना, बच्चे का होना, या डिलीशन होना, किसी की मौत हो जाना, या जिंदगी में कोई और चीजें, एग्जामिनेशन पास करना या फेल करना, कोई इम्पोर्टेंट फैमिली से टूट जाना, अलग जगह चले जाना, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हर किसी की जिंदगी में आती हैं. दीज आर कॉल्ड लाइफ इवेंट्स. और ऐसा पाया गया है कि उन लाइफ इवेंट्स के आसपास हमारी जो इमोशनल स्थिति है वो बदलती रहती है, और आमतौर पे उन इवेंट्स के आसपास इमोशंस में बदलाव आता है, यूजली नेगेटिव बदलाव आता है. एंड व्हाट इज बीन फाउंड इज की स्ट्रेसेस, एंग्जायटी एंड डिप्रेशन, विच अगेन इज अ कॉन्टिन्यूम जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो आमतौर पे उन स्पेशल लाइफ इवेंट्स के आसपास घूमता है. लेकिन वो लाइफ इवेंट्स जो है वो बहुत कम होते हैं. व्हाट वी आर सीइंग टुडे इसकी माइनर इवेंट्स इन लाइफ आर मच मोर फ्रीक्वेंट. फॉर एग्जांपल, एक बड़े शहर में अगर कार्यस्थल आपका एक घंटे दूर है और आप रोज ड्राइव करके जाते हैं और ट्रैफिक जाम होते हैं, तो वो डेढ़ घंटा एक घंटे के बजाय जो लगा, वो आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है. या अगर आपने जिंदगी में प्लान किया कि मैं लौकिक में, ये बातें होती हैं आप लोगों के लिए शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग आपके पास आएंगे सेंटर्स पे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो लोग जो कि मेडिकल विंग से रिलेटेड है उनके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो, कि किसी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा अपने लिए जोड़ा, पैसे की वैल्यू कम हो गई, या जिस कंपनी में उसमें वो पैसा लगाया वो कंपनी डूब गई. नाउ सडनली दैट्स अ वेरी वेरी मेजर इवेंट. और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं रोजमर्रा की, वही उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. या यू आर लिविंग इन अ प्लेस जहां पे सडनली इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ गई, शाम को 3 या 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, या मच्छर बढ़ गए. नाउ दीज मे सीम एज वेरी स्मॉल इवेंट्स, बट दे ऑल एड अप टू लीड टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस. उसी के साथ अगर किसी की आंतरिक स्थिति बदल जाए, कोई व्यक्ति अचानक थोड़ा सा ग्रीड में ज्यादा आ जाए और उसे लगे कि साहब मेरा जो घर है वो अच्छा नहीं है, इसको बड़ा बनाना है, एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स दैट. या उसका कोई परिवार वाला सदस्य जो है वो उसके साथ उसका रोज झगड़ा होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी जो सोचने का तरीका है और दूसरों का जो सोचने का तरीका है उसमें एक भिन्नता है. सच लाइफ इवेंट्स इन द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंग. और अगर वो थोड़ी देर के लिए किसी इमोशनल स्टेट को उत्पन्न करता है, देन दीज कुड बी साइकोसोशल डिस्टर्बेंसेस लीडिंग टू इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. लेकिन जब इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इस हद तक बढ़ जाएं कि उसकी वजह से व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में, या उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में, या उसकी नींद में, भूख में, या उसके संबंध संपर्क में, इंट्रैक्शंस में फर्क पड़ना शुरू हो जाए, देन दीज स्टार्ट बिकमिंग साइकेट्रिक इलनेसेस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर स्पेक्ट्रम एट द मोमेंट, सी विच आर द मेन प्रॉब्लम्स और किस तरह से हम उनको पहचान पाएंगे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन वेरी काइंड. They have agreed to distribute. मैं कुछ material लाया था और वो material जो है वो distribute आप लोगों को कर दिया जाएगा, जिसमें कि सरल भाषा में, English में है लेकिन सरल भाषा में, anxiety क्या है, stress क्या है, depression क्या है, sleep disturbances क्या है, tobacco के सेवन से क्या होता है, alcohol के सेवन से क्या होता है, tension headache क्या है, वगैरह वगैरह बातें खुल के बताई गई हैं. और उसमें यह भी है कि व्हाट आर द कट ऑफ पॉइंट्स, कहां पे नॉर्मल प्रॉब्लम एबनॉर्मल स्टेट धारण कर सकती है. नेक्स्ट वन प्लीज. नाउ एज आई वाज जस्ट सेइंग कि एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम सम साइकोसोशल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी और इमोशनल डिस्टर्बेंस सम टाइम और द अदर इन देयर लाइफ. दीज मे बी ऑनगोइंग और मे अफेक्ट देम और कॉज डिस्टर्बेंसेज इन अ नियर एंड डियर वन. जरूरी नहीं है कि ये आप में ही हो, हालांकि मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ज्ञान में आ गए तो हर तरह के इमोशनल डिस्टर्बेंसेज से हम बच गए. कई बार मैंने पाया है कि अपने भाई बहनों में भी अलग अलग कारणों से, संस्कार कह लीजिए या बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज कह लीजिए या बाहर का असर कह लीजिए, या अब कई बार ज्ञान में भी बहुत जल्दी सर्विस करके आगे बढ़ने की इच्छा कह लीजिए, उसकी वजह से भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं. और अगर नहीं है तो जो व्यक्ति आपके पास आते हैं सेंटर्स में, वो आमतौर पे, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो आमतौर पर किसी डिफिकल्टी को महसूस करके आते हैं. जब तक जिंदगी स्मूथली चल रही होती है तब तक बाबा की याद आमतौर पे नहीं आती है, लेकिन वो कोई मेजर इवेंट होता है और उस समय वो संपर्क में आते हैं. ध्यान ये रखना है कि अगर तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं तो उसको हैंडल कीजिए. अगर आपको लगता है कि साथ ही किसी और की जरूरत है तो फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या साइकेट्रिस्ट हो या कोई ट्रेन्ड काउंसलर हो, उसकी मदद साथ में लेनी आवश्यक हो जाती है. दी एबिलिटी टू प्रिवेंट, मैनेज और फेस दीज सिचुएशंस और इमोशंस डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पाया गया है कि कुछ लोगों की एक ही इवेंट को संभालने की शक्ति दूसरों से ज्यादा होती है. जरूरी नहीं है कि जिस चीज से एक व्यक्ति को इमोशनल डिस्टर्बेंस हो उससे दूसरे को भी हो. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आर नेचुरल डिजास्टर्स. द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर मैन मेड डिजास्टर्स. अगर भुज में एक अर्थक्वेक आया तो वहां पे कुछ लोग हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे. एक ही परिवार के कुछ लोग साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होंगे, दूसरे नहीं होंगे. सो कई लोगों की इननेट अपनी पावर्स होती हैं या स्ट्रेंथ्स होती हैं जिनकी वजह से वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से लड़ सकते हैं. ऑन एन एवरेज वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं या एक खास तरह का स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल लीड करते हैं उनकी एबिलिटी इन प्रॉब्लम्स से जूझने की कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन जैसे बाबा कहता है कि उनको फिर पेपर्स भी ज्यादा मुश्किल आते हैं. दे ऑल्सो टेंड टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम समटाइम. सो दिस फाइट आई थिंक गोज ऑन एट ऑल लेवल्स. स्पिरिचुअलिटी एज आई सेड वर्क्स बट मेनी ए टाइम्स needs to be combined with medication or professional therapy. मैं उस मामले में आज की डेट में बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर मेरा कोई रोल नहीं होता तो साइकेट्री को बाबा पनपने नहीं देता. The very fact that people like me and Nikhil and others are around is because somebody needs us. ट्रिक ये है कि ये पहचाना जाए कि किसको जरूरत है, कितनी देर के लिए जरूरत है और कम से कम किस चीज में उसका काम चल जाएगा. नॉट टू ओवर प्रिस्क्राइब एंड येट नॉट टू अंडर प्रिस्क्राइब आइदर. नेक्स्ट वन प्लीज. दोज हु आर प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्प इमोशनल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल मे ऑल्सो सफर फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स. आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन इंडिया डॉक्टर्स का एक ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रहता है वो है साइकियाट्रिस्ट्स. इट इज अ फैक्ट. ये सच है. और हालांकि आप लोग सोचेंगे अगर उनको नॉलेज है तो वो उससे क्यों नहीं बच पाते. शायद कई बार नॉलेज ओवर कॉन्फिडेंस को बुलावा देती है और उसकी वजह से जो उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो उससे डील नहीं करते या वो इतनी इमोशनल प्रॉब्लम से डील करते हैं कि उनकी अपनी इमोशनल हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होनी शुरू हो जाती है. आई वेंट थ्रू अ फेज लाइक दैट माई सेल्फ. आई कैन शेयर दैट विद दिस ग्रुप. आई वॉज टेकिंग ऑन लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ एडिक्शन. ये मिड 80s की बात है और आप में से किसी ने भी अगर एडिक्शन के किसी भी केस से डील किया हो, चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग्स हो. आई वॉज टेकिंग ऑन मोर ऑफ स्मैक एडिक्शन, ब्राउन शुगर एडिक्शन. उनके साथ रातों को जागने की भी जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ इमोशनली आपको कनेक्ट भी करना पड़ता है और उनका रिलैप्स रेट भी बहुत हाई होता है. एंड आई वेंट थ्रू अ फेज वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है. And my work started getting affected. But I realized कि ऐसा हो रहा है और जैसे ही हुआ I made certain changes अपने में. मैंने अपने कुछ colleagues से बात की इस चीज के बारे में और वो course correction जिसे कहते हैं अपने में कुछ बदलाव लाके थोड़ा काम उस तरह का कम करके या कुछ कम patients को देख के या अपने में पर्सनली कुछ चेंजेस लाके जैसे कि नींद में, खान पान में, मेडिटेशन में आई वॉज एबल टू करेक्ट. अगेन इन 87 आई लॉस्ट माई फादर सडनली इन अ फ्यू आवर्स इन फ्रंट ऑफ मी. आई वॉज गोइंग विद हिम. आई वॉज इन द कार विद हिम एंड आई न्यू ही इज गोइंग एंड आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. आई हैड नो चॉइस. मुझे मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ज्ञान में चल रहा था तब भी. बट आई न्यू दैट दिस वॉज हैपनिंग. और उसके बाद करीबन 6 महीने गुजरे ऐसे जिसमें आई कैन से दैट यस आई वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन. आई कंटिन्यू टू वर्क पर मुझे मालूम है कि मेरे इमोशंस में फर्क रहा. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि हम में से हर व्यक्ति ऐसे किसी फेज से गुजर सकता है जिस फेज में उसे इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और जरूरी नहीं है कि वो फेज परमानेंट रहे। आमतौर पे ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ समय के लिए चलती हैं, और जब आप अपने में और आसपास के माहौल में फर्क कर सकते हैं, थैंक यू, तो वैसा फेज चला तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कि साइकोलॉजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल मदद दूसरों को प्रदान करते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, उनमें भी आ सकती है। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि समझें कि कब वो प्रॉब्लम उनको या उनके किसी आसपास वाले को छू रही है। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि आमतौर पे एक फीलिंग रहती है कि अगर किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो फटाफट दवाई होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज नॉट ट्रू, दिस शुड नॉट बी ट्रू। लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु गो टू अ थेरेपिस्ट मे नॉट गेट मेडिकेशन, लेकिन हां अगर सही समय पर उनको किसी तरह की पर्सनल इंटरपर्सनल इंटरवेंशन मिले, सपोर्ट मिले, थेरेपी मिले, तो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। एंड दिस लास्ट वन, साइकेट्रिक इलनेसेस आर नॉट अनकॉमन, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस कमिंग टू स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस मे बी टेकिंग ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली और मे नीड हेल्प। पिछले 5-6 वर्षों में मैं अपने पेशेंट से पूछ लेता हूं कि आप मेरे सिवा किसी और को दिखा रहे हैं। शुरू में उन्हें ये क्वेश्चन अब समझ नहीं आता, लेकिन अब शायद एक दूसरे में पेशेंट्स की बात चलती है, सो लार्ज नंबर ऑफ देम कम आउट विद द फैक्ट कि हां हम झाड़ फूंक वाले के भी जाते हैं। कोई कहता है कि साहब हां मैं मंदिर में इतने समय से इतने उपवास रख रहा हूं, कोई कहता है मैं साथ में रेकी भी करवा रहा हूं या सीख रहा हूं, कोई कहता है कि हां मैं साथ में मेडिटेशन भी कर रहा था पर मुझे मालूम नहीं था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आपके साथ साथ वो एक आयुर्वेद या होम्योपैथ से भी ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि अगर हम उनसे ये बात पूछकर और पूरा ट्रीटमेंट इकट्ठा चल के ट्रीटमेंट कर सकें देन इट इज ईजियर। अगर वो अपने हिसाब से चलते रहें, क्योंकि फिर अलग अलग मैसेजेस मिलेंगे, कोई उनको कुछ कहेगा, कोई उनको कुछ कहेगा, सेंटर में जाएंगे, सेंटर में बहन कहेंगी कि छोड़ो दवाई क्या जरूरत है, और आमतौर पर मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा हो जाता है, और जो डॉक्टर है वो कहे कि छोड़ो मेडिटेशन क्या जरूरत है, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं उसे मैसेज मिले कि आप मेडिसिन भी चलाते रहो और साथ में जो और मेडिटेशन कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हैं, वो भी करते रहो, पेशेंट मेरे एक्सपीरियंस में दोनों चीजों को एक्सेप्ट जल्दी कर लेगा, और उसका जो फाइनल रिजल्ट उसके लिए होगा वो होलिस्टिक होगा। उसमें सिर्फ उसकी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, जो कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट का हमारे गोल है। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, साइकेट्रिक इलनेसेस कम्युनिटी में कितनी है? मैं ये इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। साइकेट्रिक इलनेसेस करीबन 1/4 ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में पाई जाती है एटलीस्ट। इसका मतलब है हर परिवार में, अगर वो 4 या 5 व्यक्तियों का परिवार है, तो एवरेज एक व्यक्ति में किसी ना किसी प्रकार की साइकेट्रिक इलनेस होगी। हो सकता है किसी को आज हो सकता है किसी परिवार में 2 साल बाद हो, लेकिन चलती रहेगी। साइकोसिस, जो कि एक मेजर इलनेस है जिसकी वजह से व्यक्ति की काम करने की शक्ति या चीजों को समझने की शक्ति, जिसे कि बिजारनेस कहते हैं, वो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि देखते ही व्यक्ति को पता लग जाता है, जिसे हल्की भाषा में पागलपन कहा जा सकता है, वो जो इलनेस है वो 2-3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में है। मेजर डिप्रेशन 3-5% में है। यहां पे आपके साथ एक और फिगर शेयर करना चाहूंगा मैं। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में एक सर्वे कैरी आउट किया, जिसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि जिसे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कहते हैं, यानी जिस बीमारी की वजह से ज्यादा व्यक्ति शिकार होते हैं या उनके काम पे असर पड़ता है या उनके लिए जो गवर्नमेंट को या सोसाइटी को इलाज देना पड़ता है, तो उसका सबसे ज्यादा बर्डन किस बीमारी की वजह से आता है। दे फाउंड कि 1990 में डिप्रेशन जो था वो नंबर 4 था आउट ऑफ द टॉप 10। इंसिडेंटली 4 आर साइकेट्रिक इलनेसेस, हार्ट डिजीज, कैंसर, इन सबको मिलाया जाए तब भी 4 जो मेजर इलनेसेस हैं वो साइकेट्रिक हैं 10 में से, और उसमें से नंबर 4 जो है टॉप से वो 1990 में था डिप्रेशन, और 2020 में प्रिडिक्टेड है कि वो होगा नंबर 2 पर आफ्टर हार्ट डिजीज। इस समय हार्ट डिजीज सेकंड है, कैंसर फर्स्ट है, एंड हार्ट डिजीज विल बिकम नंबर 1 इन 2020। सो डिप्रेशन आने वाले समय की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऑर्गेनिक साइकोसिस, जिसमें कि किसी और बीमारी की वजह से जिसमें कि दिमाग के ऊपर असर होता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो कुछ और तरह की बीमारियां हो, ये एक पॉपुलेशन है जिसे कि न्यूरोसिस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरह का इमोशन वो लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी को महसूस करता है। उसमें जो अलग अलग तरह की बीमारियां कही गई हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशंस, पैनिक अटैक, सोमेटाइजेशन, ये मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगर कोई पर्सनली डिस्कस करना चाहे भले, बट अदरवाइज दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस जो फिजिशियंस हैं इंसिडेंटली, और ये 10-15% जनरल पॉपुलेशन में होती है। ऐसा पाया गया है कि फिजिशियंस जो है वो करीबन 25% जो मरीज देखते हैं अपने क्लिनिक्स के अंदर वो साइकेट्रिक मरीज देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में एज अ ग्रुप जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है दवाइयां वो है साइकोट्रॉपिक मेडिसिन, दिमाग से कनेक्टेड दवाइयां, और आने वाले वर्षों में ऐसा पाया जाएगा कि जो सबसे ज्यादा ग्रुप दवाइयों का बिकेगा वो होगा दिमाग को शांत करने के लिए या दिमाग की बीमारियों को ट्रीट करने वाली दवाइयां। बनारसी भाई सोच रहे हैं कि कोई ऐसी चीज इदाद की जाए। नेक्स्ट वन प्लीज। मेंटल सबनॉर्मेलसी, यानी जिसे मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं, जिसमें कि बुद्धि का विकास पूरी तरह से जिन व्यक्तियों में नहीं होता, चाइल्डहुड साइकेट्रिक प्रॉब्लम, 10% बच्चों में किसी प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम रहती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, स्टेमरिंग, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, ऑब्सेशंस, बेड वेटिंग वगैरह वगैरह। 20-25% जो 65 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, और डिप्रेशन उनमें हाईएस्ट कैटेगरी है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी दो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो है एल्डरली, और लौकिक में अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट बड़े शहरों में उन लोगों की सपोर्ट नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो या तो छोड़ के चले गए हैं या कहीं और काम करने चले गए हैं, और वो मियां बीवी अकेले रहते हैं, उनके पास कई बार इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते, या इलाज करवाने के लिए पैसे हैं लेकिन जा नहीं सकते, सो दे आर अ डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर। एल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्ट, ये 8-10% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी प्रकार के शराब या दूसरी ड्रग्स का सेवन करती है। इसमें मैंने तंबाकू को इंक्लूड नहीं किया। अगर आप तंबाकू को भी देखें तो WHO की फिगर्स के अनुसार भारतवर्ष में एडल्ट मेल पॉपुलेशन करीबन 35-40% इस्तेमाल करती है तंबाकू को अलग अलग रूप में. सो यस्टरडे व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि तंबाकू सेवन के लिए जो मेजर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट लिया जाएगा, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेप. मैराइटल डिसहार्मनी ये बढ़ रही है, पति पत्नी में आपस में मुश्किलें एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंक्लूडिंग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, दीज आर प्रॉब्ली मोर देन 25%. सो अगर इन सारी फिगर्स को इकट्ठा किया जाए तो देखा जाता है कि करीबन एक चौथाई लोग हर समय किसी ना किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, इतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कि उसके लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत है, इलाज, चाहे वो प्रोफेशनल इलाज हो या स्पिरिचुअल हो, और अगर वो थोड़ा ज्यादा है तो मेडिसिंस का इलाज जरूरी हो जाता है. मैं बहुत ब्रीफली इस चीज को टच कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ये है. स्ट्रेस हैज बीन फाउंड टू बी द मेन स्टे फॉर ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऐसा पाया जाता है कि तनाव, जिसके बारे में अगले दो दिनों में बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होने वाले हैं, लेकिन तनाव की वजह से कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं और तनाव की वजह से जो बीमारियां चल रही हैं वो बढ़ जाती. सो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इनिशिएशन और वर्सनिंग ऑफ अ मेंटल इलनेस. ये बॉडीली चेंजेस हैं. आज सुबह जब स्टेज फियर की बात हो रही थी, देखिए इसमें भी एक कॉन्टिन्यूम है. थोड़ा सा अगर हो तो वो एक फियर है, उसके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है. अगर वो थोड़ी ज्यादा देर चले तो वो एक स्टेट बन जाती है, यानी जब तक मैं स्टेज पर हूं मैं फियरफुल हूं, तो वो एंग्जाइटी एक इमोशन बन गई, स्टेट. और अगर वो लगातार चलती रहे, बिना कारण के चलती रहे, मेरी नींद को खराब करे, मेरे इंट्रैक्शंस को खराब करे, तो वो बीमारी बन जाती है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस. उसी प्रकार से डिप्रेशन एक इमोशन है. अगर कोई व्यक्ति कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हुआ वो नॉर्मल नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कट खुल के कह सकता हूं. आई एम श्योर कि जो बीकेज हैं उनमें भी कभी कभी किसी ना किसी कारण से कोई बीमार पड़ गया या किसी साथ वाला, इतना हटना जो है वो सिर्फ संपूर्णता की स्टेट में आता, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए एक इमोशन के रूप में डिप्रेशन हर किसी को आता. अगर वो किसी कारण से आता है तो वो एक इमोशन है, और अगर वो बिना कारण के चलता रहता है और वो उसकी वजह से व्यक्ति की जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ या काम करने की क्षमता है या नींद या भूख, इन सब पे असर पड़ता है, या कुछ खास तरह की चीजें जैसे सुइसाइडल आइडियाज या गिल्ट फीलिंग, मरने की इच्छा या अपने आप को हर चीज के लिए दोषी महसूस करना, ये अगर चीजें होनी शुरू होती हैं तो फिर वो एक साइकेट्रिक इलनेस बन जाता है. नेक्स्ट वन प्लीज. व्हेन टू सी द साइकेट्रिस्ट. अगर ऐसा लगता है कि स्ट्रेस या स्ट्रेस से जुड़े हुए जितने भी इमोशंस हैं वो इतना तनाव पैदा कर रहे हैं कि आपकी इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, जो एक समय पर आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे, या ये जो तनाव की फीलिंग है ये बहुत ज्यादा समय तक चलती है या इतनी ज्यादा है कि आप उसे महसूस नहीं कर सकते, जैसे कहा जाता है ना कि बाबा की शक्ति बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो शायद उषा बहन कह रही थी कि शेयर ऑफ. तो अगर वो इतनी ज्यादा हो कि आप उसे नहीं संभाल पा रहे हैं, या उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां, शारीरिक बीमारियां जल्दी जल्दी होने लगे, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो रही हैं, डॉक्टर कहता है कि साहब आपको दवा तो पूरी मिल रही है लेकिन आप मन में कुछ रख रहे हो या सोच रहे हो, तो अगर वैसा हो रहा है तो आपको या उस व्यक्ति को जिसको कि ये है प्रोफेशनल मदद की जरूरत है. नेक्स्ट वन प्लीज. किस तरह से मुझ जैसे लोग मदद कर सकते हैं, वो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि किन कारणों की वजह से ये सारे सिम्टम्स शुरू हुए हैं, या वो ये देख सकते हैं कि ऐसे क्या चीजें हैं आपके माहौल में जिसकी वजह से आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं, या आपकी अपनी आकांक्षाएं या आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं तो वो दवाई भी उस समय दे सकता है। जरूरी नहीं है कि दवाई एक बार शुरू की जाए तो इसका मतलब है कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत खत्म हो गई। दवाई को दादी का रूप समझ के चले। कई बार जब अपने से प्रॉब्लम नहीं हैंडल होती तो बड़ी दीदी या दादी से सलाह लेनी पड़ती है। तो उसी तरह से कुछ समय के लिए अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको कम करने के लिए आप किसी चीज की मदद ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आप उस प्रॉब्लम को ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो हमेशा ही चलती रहेगी, या अगर एक बार शुरू हो गई तो हर बार चलती रहेगी। लेकिन अगर है तो मेरे ख्याल से एक बार पूरी तरह इवेल्युएशन होने के बाद उसे लेने में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन प्लीज। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्पेशल मेथड्स ऑफ रिलैक्सेशन है, जिसे कि बायोफीडबैक या इलेक्ट्रोस्लीप कहा जाता है। कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो कि अगले एक या दो दिन में एंग्जायटी और स्ट्रेस के लिए यहां भी सिखाई जाएंगी। और कई बार काउंसलिंग सेशंस जो हैं, जो कि स्ट्रेस फैक्टर्स को संभाल सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड एज आई सेड कि मेडिकेशन जो कि कुछ समय के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट वन, आप क्या कर सकते हैं इन चीजों से लड़ने के लिए? कुछ बेसिक चीजें हैं कि फाइंड आउट कीजिए कि क्या कारण है अपने आसपास या आप पे जिनकी वजह से आपको तनाव महसूस हो रहा, क्या करना चाहिए। कभी कभी दूसरे से बात करने से ये चीज आसान हो जाती है कि आप इन सिचुएशंस को कैसे बदल सकेंगे या उसको कैसे बाईपास कर सकेंगे। मेरे ख्याल से इस चीज के लिए ज्ञान में कई पॉइंट्स हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपकी मनस्थिति ऐसी है कि आप उन पॉइंट्स को लगा ही नहीं पा रहे, तो फिर किसी और की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन प्लीज। क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं, आप में क्या क्या रिसोर्सेज हैं एज अ पर्सन? कई मेथड्स हैं रिलैक्सेशन के, बहुत सिंपल से। बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, सारे दिन में या कुछ समय के बाद थोड़े दिन के लिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है, कई बार लौकिक में तो डेफिनेटली हो जाता है कि जब हम प्रोफेशन में आ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी चीज हो, चाहे गाने का किसी को शौक हो या पेंटिंग का शौक हो, वो छूट जाता। बट वंस अगेन पिक देम अप। फेवरेट स्पोर्ट्स हो, हॉबीज हो, हठ योग भी कई बार स्ट्रेस को मदद कर सकता है। डेफिनेटली एक्सरसाइज उसमें मदद कर सकती है, मेडिटेशन, म्यूजिक उसमें मदद कर सकता है। और बाहर वालों के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। जो सेंटर्स में आपके पास लोग आते हैं, आमतौर पर वो आके कहेंगे कि दीदी थोड़ी देर के लिए तंबाकू लेके बड़ा मजा आ जाता है, यू नो सारी चीजें भूल जाता हूं। शाम को घर पहुंचता हूं, बीवी लड़ रही होती है, दो पैक शराब के लगाता हूं, भूल जाता हूं। फैक्ट है। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो दो तीन घंटे के लिए वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करता, लेकिन फिर अगले दिन सुबह वो ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करता और वो एक साइकिल बन जाता है जिससे वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। तो उसके लिए अगर वो ज्यादा देर से शराब ले रहा है तो शायद शुरू के समय में उसको शराब छुड़वाने के लिए मदद की जरूरत पड़े। स्पेशली कई बार विड्रॉल्स होते हैं, पोत शराब के लिए भी, तंबाकू के लिए भी, तो उस समय में उसकी मदद करने की जरूरत भी पड़ेगी। फिर ऑफ कोर्स किन कारणों से वो ले रहा है, उन कारणों को भी बेटर करने से उसकी मदद की जा सकती है। बट बेसिकली चाहे वो शराब हो चाहे वो तंबाकू हो, उससे किसी भी प्रकार से स्ट्रेस रिडक्शन नहीं होती। थोड़ी देर के लिए वो अपने कष्ट को भूल सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, लास्ट स्लाइड। मेरे ख्याल से ये एक जरूरी चीज है जो कि जितना पॉसिबल हो सेंटर्स में किया जा सकता है, कि किसी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के टच में रहें कॉन्स्टेंटली और उसे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इंटरेक्शन बना लें। कई ऐसे पेशेंट्स होंगे डॉक्टर्स के पास जिनको कि आपकी मेडिटेशन से या लाइफस्टाइल से मदद मिलेगा, आपके कोर्सेज से मदद मिलेगी। और उसी प्रकार से या कोई बाहर से जब आता है उसे किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल मदद की जरूरत हो तो उस डॉक्टर की मदद ली जा सकती है, क्योंकि इस इंटरेक्शन से जो कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में हो सकता है, ये भी होगा कि जब किसी को जरूरत होगी तो उसको सही समय पर सही थेरेपी मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति वहां पे किसी भी प्रकार के मदद के लिए आया है उसकी जो ग्रोथ या थेरेपी होगी वो भी होलिस्टिक भी होगी और लॉन्ग लास्टिंग यानी एंड्योरिंग भी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ समय के लिए है, इट मे बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि उसकी वजह से आप जितना चाहते हैं अचीव करना वो नहीं कर पा रहे। अटेंशन डेफिसिट कई बार स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लेकिन कई बार वो बहुत बेसिक कारणों की वजह से हो सकता है, लो लेवल्स ऑफ शुगर स्पेशली इन डायबिटीज, या आप बहुत देर से बैठे हैं, या कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा है जिसमें कि बोर्डम है, जिन चीजों के बारे में हमने सुबह बात की। बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है, जो कि एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बच्चों के लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जितनी उसकी अच्छे मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ सकते, प्लस अगर वो ज्यादा देर तक चलता रहे या बढ़ जाए तो उसकी वजह से उसकी लर्निंग जो है हर एरिया में, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, चाहे वो बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द फैमिली हो, उसमें फर्क आ सकता है। और उसके लिए बोथ बिहेवियर थेरेपी और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से उसकी मदद की जा सकती है। यस, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एंड हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स आर यूज इंटरचेंजेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। व्हाट इज फाउंड इज कि हाइपरकाइनेसिस में बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता और उसका ध्यान बार बार बदलता रहता है, और उसकी वजह से उसकी लर्निंग नहीं होती। जब लर्निंग नहीं होती तो परिवार वालों से या स्कूल में उसे डांट पड़ती है, और उसकी वजह से कई बार उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेज आनी शुरू हो जाती है। इसका पहले माना जाता था कि सिर्फ दवाइयों से ही इसका इलाज हो सकता है, बट नाउ इट हैज बीन फाउंड कि अटेंशन डेफिसिट दो प्रकार के हैं, वन इज सिचुएशनल एंड द अदर वन इज अटेंशन डेफिसिट पर से। कई बार कुछ बच्चों का अटेंशन सिर्फ मां बाप के साथ प्रॉब्लम होगा और कुछ का सिर्फ स्कूल में होगा, तो अगर ऐसा है तो उसको बिहेवियर थेरेपी से बेटर किया जा सकता है, लेकिन अगर परवेसिव है तो उसको दवाइयों की मदद से बेटर किया जा सकता है।
टू क्वेश्चन
फॉरगेटिंग के लिए, आप फॉरगेटिंग उसके लिए आगे सेशन एक होने वाला है ना। देखिए, फॉरगेटिंग डिपेंड करता है कि किस लेवल की है और किस एज पर है। किसी 80 साल के व्यक्ति में अगर दो चार चीजें भूल जाएं तो उसे मैं अबनॉर्मल नहीं समझूंगा, या कोई व्यक्ति गहन भट्टी में है और पांचवें दिन उससे पूछें कि आज कौन सी डेट है और उसे ना याद रहे तो मैं उसे फॉरगेटिंग नहीं समझूंगा। लेकिन अगर फॉरगेटिंग हर सिचुएशन में है देन इट इज एबनॉर्मल। फॉरगेटिंग का एक्चुअली सबसे बड़ा कारण है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, नॉट ऑर्गेनिसिटी। कितनी बार ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी में जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपसे कोई पूछता है कि मैंने पीछे से बुलाया था तुमने सुना नहीं, आप कहते हैं मैं इतनी जल्दी में था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो फॉरगेटिंग नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई दिमाग पे। आपका मन, आपका दिमाग, बुद्धि एक तरफ चल रही है तो दूसरी चीज उसके ऊपर रजिस्टर नहीं हुई। दैट मे बी टर्म फॉरगेटिंग बट एक्चुअली इट इज अ लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। और जैसे जैसे आप ज्यादा कंसेंट्रेट कर पाते हैं और आप तनाव से थोड़ा सा मुक्त होना शुरू हो जाते हैं तो वो चीज बेहतर हो जाती है। लेकिन फॉरगेटिंग जो कि 40s और 50s के बाद शुरू होती है, या किसी बीमारी की वजह से शुरू होती है, या वो जिसमें कि लगातार व्यक्ति भूल रहा है, दैट इज एबनॉर्मल। और उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज कहा जाता है, जिसके लिए कि आज के समय में कुछ इलाज पॉसिबल है, या जो बेसिक बीमारी है उसकी वजह से अगर है तो वो उसका इलाज करना जरूरी हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉर्मल फॉरगेटिंग जिसे कहा जाए कि मैं थोड़ी देर के लिए कुछ चीज बुद्धि पे नहीं रही क्योंकि ध्यान कहीं और था, उसको जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा, अगर आपका योग फॉर एग्जांपल बेटर रहेगा
और आपके दिमाग को ट्रेनिंग ज्यादा मिलनी शुरू होगी, देन दैट फॉरगेटिंग विल डिसअपीयर. बच्चों में आमतौर पे 3 to 5 इयर्स में माना जाता है कि बेड वेटिंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि कई बार कुछ सिचुएशंस में 7 से 8 साल की उम्र तक भी कभी कभी बच्चे, अगर मान लीजिए बहुत जल्दी सो गए और उस दिन टॉयलेट नहीं जा सके तो हो सकता है, लेकिन 5 साल की उम्र के बाद अगर कंसिस्टेंटली वो बेड वेट कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है. और वंस अगेन उसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती. फर्स्ट ट्रायल इज बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि सोने से 4 घंटे पहले तक किसी भी तरह की कॉफी कोलाज नहीं दिए जाएं, सोने से डेफिनेटली 1 घंटा प्रेफरेबली 2 घंटा पहले किसी भी प्रकार के लिक्विड्स ना दिए जाएं, जाने से पहले उसको टॉयलेट ले जाके पूरी तरह से यूरिन करवाया जाए, और फिर बीच में अगर एक बार उठ के उसको यूरिन करवाया जा सके तो बेहतर है. सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से उसको कवर किया जाए, स्पेशली उसके पैरों को अगर कवर किया जाए, और उसके लिए अगर फिर भी ऐसा ना हो तो सेकेंडरी टेक्निक्स हैं, जिसमें कि कुछ खास तरह के बेडशीट्स आती हैं जिसके कि अंदर एक बेल होती है, जैसे ही बच्चा बेड वेट करता है तो वो एक कनेक्शन सेट हो जाता है और बेल बज जाती है. जब बेल बज जाती है तो बच्चा एकदम घबरा जाता है और उसके दिमाग में वो फिर सेट शुरू हो जाता है कि बेल बजेगी, तो वो उसका ध्यान रखता है और साइकोलॉजिकली वो उस चीज को कंट्रोल कर पाता है. लेकिन आमतौर पर ऐसा पाया गया है कि अगर बच्चे में किसी भी तरह की ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल्सो टू बी सीन, और कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है बच्चे में, नई जगह पे गया है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसे सॉल्व किया जाए तो दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती. पर अगर ये सब फेल हो तो करीबन 3 से 6 माह के लिए लो डोजेज कुछ दवाइयों की जो है वो उसमें मदद कर सकते हैं. बच्चे को रोज जब वो यूरिन करता है और सुबह उठ के वो दाग देखता है और उसके दूसरे भाई बहन उसको पॉइंट आउट करते हैं, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम. जी, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, या ये दिया जा सकता है. यू नो मेनी अ टाइम्स देर मे बी सिचुएशंस एंड आई फाउंड द बिगेस्ट कॉज ऑफ दैट इज कि एट वन लेवल वी आर गोइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राजयोगा और अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एंड एट द अदर लेवल जो हमारा प्रोफेशन चल रहा है हम उसी के हिसाब से चलते हैं. जब काम आता है तो 12-12 घंटे भी करते हैं, अगर काम बढ़ रहा है तो उसको ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर कहीं नाम मान शान मिल रहा है तो उसमें भी चलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग यह है कि अगर आप नाम मान शान में जाएंगे तो फिर किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनेंगे तो उसकी वजह से काम भी बढ़ेगा, तो मेडिटेशन के लिए भी समय निकालना है, मुरली के लिए भी समय निकालना है, काम के लिए भी समय निकालना है, परिवार के लिए भी निकालना है, वो फिर एक खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है. आई थिंक इफ वन कैन बी वेरी क्लियर कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कहां हो रही है एंड देन यू सेट योर प्रायोरिटीज. यस आई एग्री कि कई बार कोर्स करेक्शन बीच बीच में करते रहना पड़ता है, एंड यस उस चीज को इंटरनलाइज होने में थोड़ा समय लगता है. वो पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन धारणा तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा ये बीच में कई बार आउट होते हैं, लेकिन हर बार के साथ सीखता है इंसान. स्टार्ट वांटिंग परफेक्शन, बट एज गिरीश भाई सेड इन द मॉर्निंग, परफेक्शन इज डिफिकल्ट. फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यस डेफिनेटली, एज आई सेड दैट देयर आर मेनी टेक्निक्स. For example, each of your patients is like a presentation. You know, for each of our patients, we can plan out how I'm going to treat this person. And before you go into any of the surgery, you can give yourself the same procedure that we spoke about in the morning. The accuracy will be much better. देखिए, प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी. I don't think any method that we adopt वो इस चीज को बदलेगा, क्योंकि these are global figures. और मैंने personally पिछले 15-20 साल की जो प्रैक्टिस है साइकेट्री की, 20 साल के करीब, उसमें देखा है कि ये फिगर्स बढ़ रही हैं. और क्योंकि फिगर्स बढ़ रही हैं, इसलिए लोग ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आ रहे हैं. सो ये कांस्टेंट प्रोसेस है जो चल रहा है. मेरे ख्याल से एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा जब, बाबा का कहने का शायद मीनिंग ये है कि जब प्रत्यक्षता होगी. मेरा सोचना उसमें कुछ इस तरह से है कि जब क्रिटिकल नंबर ऑफ लोगों को महसूस होगा कि एक रास्ता ये जो है, इस रास्ते पर चलना जरूरी है. सो उसके लिए वेट करेंगे. बट आई थिंक उससे पहले पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें जरूर इस्तेमाल की जा सकती हैं. पहली चीज रिकग्नाइज करना कि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स को पता कर लेना. दूसरा, जब हो तो उनको अपने ऊपर अप्लाई करना, उससे भागना नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी समय उससे भागते हैं. तीसरा, अगर हो तो कोई व्यक्ति जिसके कि आप क्लोज हैं, अगर वो प्रोफेशनल हो तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आप बात कर सकें और महसूस कर सकें कि ये चीज मुझ पे अप्लाई आज की डेट में होती है क्या, क्या मैं आज थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूं, क्या उसके कारण हो सकते हैं. वो बड़ी दीदी हो सकती है, वो कोई हॉस्पिटल का व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध संपर्क में डॉक्टर हो सकता है. जहां तक फैमिलीज की बात है, कुछ फैमिलीज में डिप्रेशन खास तौर पे रन करता है, इट इज नोन. बट लेट मी शेयर अनदर थॉट विद यू हेयर, जो कि शायद मेडिकल विंग वालों को थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. अगर जनरल पॉपुलेशन में डिप्रेशन के आंकड़े 3-5% हैं, अगर किसी के पेरेंट को है तो वो आंकड़े जंप करके 8-10% हो जाते हैं. दो पेरेंट्स को है तो वो 16-20% हो जाते हैं. लेकिन 16-20% का ये मतलब है कि 5 फैमिलीज में से एक फैमिली में होगा, 4 में नहीं होगा. तो फैमिलीज में रन करने का मीनिंग ये नहीं है कि वो हर किसी में होगा. एंड द सेम इज ट्रू अबाउट डायबिटीज, द सेम इज ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन. एक फैमिली में 2 बच्चों में से एक को डायबिटीज होती है, दूसरे को नहीं होती है. पेरेंट्स दोनों के सेम है. वहां पे स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो पास्ट लाइफ संस्कार, कर्मों की गहन गति, वो सब कहा जा सकता है. और दूसरे तरीके से लौकिक से देखें तो जो लाइफस्टाइल है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, वो आ जाते हैं. एंड आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू रियलाइज कि हम अपनी जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते. जो मेरे पास जीन पूल है वो सेम है, लेकिन मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करता हूं उसको मैं बदल सकता हूं. सो इसलिए जहां फैमिलीज में भी रन करता है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि वो फैमिलीज इस चीज के बारे में ज्यादा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में जाएं, ज्यादा इस चीज के बारे में जाने, और जल्द से जल्द अगर किसी को हो तो उसका इलाज करवाएं. Then it can be found to be useful. इस समय जीन थेरेपी बिल्कुल नहीं है. बीच बीच में कुछ रिपोर्ट्स पड़ी थी स्किजोफ्रेनिया के बारे में. खास तौर पे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बात चली थी कि कुछ खास एंटी डिप्रेसेंट शायद कुछ खास तरह की जीन्स के साथ मैच हो सके. बट अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो शायद आज से 30-40 साल बाद, नॉट एट द मोमेंट. देखिए, मेरे ख्याल से जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है उससे ज्यादा बर्डन उसकी फैमिली पर आता है, क्योंकि उसको संभालने के लिए, उसके बिहेवियर को संभालने के लिए उन लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता. और अगर वो व्यक्ति कमाई करने वाला मेंबर हो देन इट इज मच मोर डिफिकल्ट. तो जो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं दे नीड टू बी टैकल्ड. और उनके लिए अनक्वेश्चनेबली एक अलग तरह का होलिस्टिक लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बहुत काम करता है. जी, इट इज. जी,
व्हाट इज द
सचिन भाई वाद्य से,
या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, कि सैडनेस एंड डिप्रेशन, क्योंकि मेनी टाइम्स यू यूज रॉन्ग वर्ड एट द रॉन्ग प्लेस. यू सेड वी गेट डिप्रेस्ड, समवन शुड गेट डिप्रेस्ड इन हिज लाइफ वंस एटलीस्ट. Okay. So, Is it sadness or is it depression? Because we are using sometimes wrong word. This is one question. Second question is, what is the difference between temperament, mood, feeling and emotion? Are they, it's a continuum or is there any subtle differences? Because some people use it, because some lectures I heard, they use it, emotions are negative or feelings are negative. So is it so? What is your opinion on this?
बहुत टेक्निकल बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, पर अच्छे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि जैसा सचिन भाई ने कहा कि हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. मेनी अ टाइम्स मेरे पेशेंट्स आके अपने डायग्नोसिस बताते हैं कि साहब मेरे को डिप्रेशन है. मैं उनसे पूछता हूं, भाई किसने कहा आपको? नहीं, मेरे साथ में जो रहते हैं उन्होंने कहा कि तेरे को डिप्रेशन है. या मैं उस डॉक्टर से मिला तो उसने कहा डिप्रेशन है. अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन वर्ड सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है. फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफ मेडिकल विंग आई मस्ट क्लैरिफाई, जब भी कोई अपने आप को डायग्नोसिस दे उससे सिम्टम जरूर पूछो, उसकी डायग्नोसिस अलग हो जाएगी. दिस इज अ कॉन्टिन्यूम, बट बेसिकली सैडनेस एंड डिप्रेशन are not only different states of emotions, but depression can be an illness and sadness is not an illness. Sadness aam taur pe kisi bahari karan se hoti hai, aur jab wo karan dur ho jate hain to sadness bhi dur ho jati hai. Zaruri nahi hai ki depression bahari karanon se ho, depression aantrik bhi ho sakta hai. No, that is not right. When it is sadness, it is only an emotion. Sadness किसी चीज से temporally related है. वो चीज हुई, sadness हुई, वो चीज खत्म हो गई, sadness ठीक हो गई. Sadness लोगों के साथ मिलने से, बात करने से बेहतर हो जाती है. Depression शायद, especially अगर severe depression हो तो better नहीं होगा. Sadness आमतौर पर शाम को ज्यादा होती है. अब मैं और technical में जा रहा हूं. डिप्रेशन स्पेशली मेजर डिप्रेशन आमतौर पर सुबह ज्यादा होता. सैडनेस की वजह से अगर नींद में डिस्टर्बेंस होती है तो आमतौर पर नींद आने में डिस्टर्बेंस होती है. डिप्रेशन में अगर होता है तो यूजली अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है. सैडनेस में व्यक्ति को शून्यता नहीं महसूस होती, उसे ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर जो है वो खराब है. डिप्रेशन स्पेशली सीवियर डिप्रेशन में व्यक्ति को शून्यता महसूस होती है. डिप्रेशन में आमतौर पर सुसाइडल थॉट्स नहीं होते, सॉरी सैडनेस में सुसाइडल थॉट्स नहीं होते, डिप्रेशन में होते हैं. सैडनेस में फ्यूचर होपलेस नहीं लगता, और अगर लगता है तो उसे लगता है कि ये चीज ठीक हो जाए तो फ्यूचर ठीक हो जाएगा. डिप्रेशन में फ्यूचर होपलेस लगता. सैडनेस में गिल्ट फीलिंग्स नहीं होती, डिप्रेशन में होती. सो दिस इज इन अ नटशेल द डिफरेंसेस. बट हाँ जी, yeah, but that's mostly very loosely used word, scientifically not.
Nay, they, after listening these differences, I think some figure should drop down from depression to sadness.
Okay, I'll clarify that. When we talked about people who are, ये जो 3-5% है ये अटल फिगर है, ये ग्लोबल फिगर है. इसके बियॉन्ड जो है, कई लोग हैं जो कि ज्यादा लंबे समय तक सैड रहेंगे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे. और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और इसलिए भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना कि अगर सैडनेस को चलते रहने दिया जाए या जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका सही समय पर निदान नहीं किया जाए तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं. और अगर जल्द से जल्द उसका निदान हो जाए तो बीमारी होने से उसको बचाया जा सकता. लोनलीनेस इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो मुझे लगता है ये भी कॉमन बात है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. लोनलीनेस जो है, लोनलीनेस एटलीस्ट लौकिक में आज के समय में एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि लोग एक ही परिवार में रहकर भी लोनली हैं. आप एक ही कमरे में दो व्यक्ति रहकर भी लोनली हो सकते हैं अगर एक दूसरे के साथ कनेक्शन ना हो. लोनलीनेस हैज मोर टू डू विद कनेक्टिंग विद अनदर पर्सन,
or connecting with something else that you are comfortable with. Loneliness ki wajah se kai tarah ke emotions precipitate ho jate hain, and the commonest is depression usme. Aur wo depression jo hai wo reactive type ka jise kaha jata hai, ya depressive neurosis jisko pehle kaha jata tha, wo hai. Loneliness mein ek aur cheez bhi pai gayi hai ki uski wajah se jise psychoneuroimmunology bolte hain, व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर विच सेज नाउ कि वो व्यक्ति जो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं या वो व्यक्ति जो कि ज्यादा खुश रहते हैं, इन्हें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कम होती हैं, वो व्यक्ति हैं जिनकी या तो शादी हो चुकी है और डिवोर्स नहीं हुआ, या उनका साथी मरा नहीं, या वो किसी ऐसे माहौल में है जहां पे कि उन्हें फीलिंग ऑफ जो स्नेह की एक भावना है वो महसूस होती है. एंड व्हाट्स बीन फाउंड इज, एंड दिस इज अ वेरी वेरी रिमार्केबल रिसर्च जो कि पिछले 5-7 वर्षों में आई है, कि जो फैक्टर्स पाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग फॉर फिजिकल इलनेसेस, वो ये नहीं है कि साहब अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से लोगों का इलाज जल्द हो जाता है, या हेलीकॉप्टर्स हैं जिसकी वजह से कार्डियक इलनेसेस वालों को बहुत जल्दी बाईपास मिल जाती है, लेकिन वो सोशल फैक्टर्स है. व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उस माहौल में उसे कितनी भावना मिलती है कि उसके आसपास वाले उसका मान करते हैं या उसे स्नेह देते हैं, या वो कितना सोशल ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व है, या सोशल प्रोजेक्ट्स में वो व्यक्ति कितना इन्वॉल्व है, उसको जो एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम जिसे कहा जाता है, कि अपना सोमान की जो भावना है वो उसकी कितनी अच्छी है, और अगर वो भावनाएं अच्छी हैं तो चांसेस हैं कि उसको फिजिकल बट डेफिनेटली मेंटल इलनेसेस कम हो. और उस समाज में जहां पे कि आज परिवार भी टूट रहे हैं, और जो परिवार हैं उनमें बड़े बड़े शहरों में तो आप सबका एक्सपीरियंस है ही कि लोगों को सामने वाले व्यक्ति का नाम भी नहीं मालूम होता. सो दैट लोनलीनेस इन अ बिग सिटी जहां पे कि लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन लोगों के कनेक्शंस कम हो रहे हैं, दैट इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम. एंड आई थिंक अगर उसको भी कम किया जा सके किसी प्रकार से, देन उससे भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बेटर किया जा सके.